आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं। देन मैंने उसको लिखना इसलिए कबूल किया कि मैं जानता था कि मैं इसको कंटेम्प्रोरी बना सकता हूँ और इसको हिंदुस्तान के गुजरे हुए कल को हिंदुस्तान के आज से जोड़ सकता हूँ।
ये आवाज है महाभारत धारावाहिक के पटकथा लेखक डॉक्टर राही मासूम रजा की। राही के साहित्य को पढ़ने वाले शायद इस बात पर एतराज करेंगे कि राही को मुख्य रूप से महाभारत धारावाहिक के पटकथा लेखक के तौर पर ज्ञात किया जाए, लेकिन ये भी एक सच है कि महाभारत के संवादों और पटकथा ने उन्हें अमर बना दिया। भारत के करोड़ों लोगों ने महाभारत की कहानी सुनी जरूर थी, लेकिन राही ने इसे हर घर में पहुंचा दिया। शुरू में जब बी आर चोपड़ा ने राही को महाभारत लिखने का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन ये बात किसी तरह समाचार पत्रों में छप गई। राही मासूम रजा के सबसे नजदीकी दोस्त कुंवर पाल सिंह उनकी जीवनी में लिखते हैं,
जब बी आर चोपड़ा ने घोषणा की कि राही मासूम रजा महाभारत के संवाद लिखेंगे तो उनके पास पत्रों की झड़ी लग गई, जिनका मूल स्वर था कि सारे हिंदू मर गए हैं क्या जो एक मुसलमान से महाभारत लिखवा रहे हैं। चोपड़ा साहब ने ये सभी पत्र राही के पास भेज दिए। राही की एक कमजोर नस थी, वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बहुत बड़े अध्येता थे। अगले दिन उन्होंने चोपड़ा साहब को फोन किया। चोपड़ा साहब, महाभारत अब मैं ही लिखूंगा, मैं गंगा का बेटा हूँ, मुझसे ज्यादा हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता कौन जानता है।
मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की।
राही मासूम रजा का जन्म 1 अगस्त 1927 को गाजीपुर में हुआ था। 11 साल की उम्र में राही को टीबी हो गई, जो उस समय असाध्य रोग था। बीमारी के बीच उन्होंने घर में रखी सारी किताबें पढ़ डाली। उनका दिल बहलाने और उन्हें कहानी सुनाने के लिए कल्लू काका को मुलाजिम रखा गया। राही ने खुद माना है कि अगर कल्लू काका न होते तो उन्हें कहानी की सही पकड़ कभी ना आती। राही के भांजे और जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट नदीम हसनैन याद करते हैं,
हम लोग गर्मियों की छुट्टी में अपने नानिहाल जाया करते थे गाजीपुर। मेरी सबसे पहले की जो यादें हैं वो वहीं की हैं, और वहाँ मैंने राही साहब को घर में तो कुर्ता पायजामा पहने देखा और हल्के से लंगड़ा के वो चलते थे, इसलिए कि उनको पैर में पोलियो था। बहुत नफीस उर्दू बोलते हुए और बड़ी उम्दा भोजपुरी बोलते हुए, और बाहर मैंने उनको हमेशा शेरवानी और अलीगढ़ी पजामे में देखा, और शेरवानी भी मैंने कभी रंगीन नहीं देखी उनको, हमेशा वो एक क्रीम कलर की शेरवानी पहना करते थे, चश्मा हमेशा वो काला लगाया करते थे, हालांकि उनके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं था। और उसके बाद मुहर्रम में मैंने उनको मजलिस पढ़ते हुए देखा, जो शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। तो एक तो वो कभी मेंबर पर नहीं बैठते थे, वो ज्यादातर खड़े होके और माइक के ऊपर जैसे तकरीर होती है उस तरह से होती थी, लेकिन उनको कोई मजहब से कुछ खास लगाव नहीं था उनको।
जब राही बीमारी से ठीक हुए तो उनको पढ़ाने के लिए मौलवी मुनव्वर को रखा गया, लेकिन उनकी उनसे कभी नहीं बनी। कुंवर पाल सिंह लिखते हैं,
मौलवी साहब राही को कभी पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें पढ़ाई से ज्यादा पिटाई करने में मजा आता था। राही ने एक बार मुझे बताया था, हम पिटाई से बचने के लिए अपना जेब खर्च मौलवी मुनव्वर को दे देते थे, इसलिए हम लोगों का बचपन बड़ी गरीबी में गुजरा, और शायद यही वजह है कि खरीद फरोख्त की कला न मुझमें और न ही भाई साहब मुनीस रजा में है। हम लोग झट से पैसा खर्च करने के आदी हैं, शायद इसलिए कि मौलवी मुनव्वर का डर अभी तक नहीं निकला है। हम डरते हैं कि पैसा खर्च न किया गया तो पैसा मौलवी साहब झपट लेंगे।
राही मासूम रजा के बारे में मशहूर था कि वो एक साथ कई स्क्रिप्ट्स पर काम करते थे। शुरू शुरू में वो नाम बदलकर उपन्यास भी लिखते थे।
एक बार मैंने उनको देखा कि वो 2-3 क्लिप बोर्ड एक साथ रखे हुए हैं, जिसके ऊपर वो थोड़ी देर एक पर लिखते हैं, फिर उस पर दूसरे पर लिखते हैं। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी इस बात की हुई, मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा ये आप 3 चीजें एक साथ क्या लिख रहे हैं। कुछ हंस के टाल गए मुझसे, कहने के बताऊंगे फिर कभी। लेकिन जब यही सवाल कुछ और लोगों ने भी किया घर के ही, कि ये आप 3 स्क्रिप्ट एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, तब मैंने उनको फिर बोलते सुना, मैं एक तो रोमानी दुनिया का एक नॉवल लिखता हूँ और एक मैं लिख रहा हूँ जासूसी दुनिया का, और एक मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ एक किसी अखबार के लिए वो लिख रहा हूँ, तो बड़े थोड़ा तजुब भी हुआ इस बात को। गालबन जो वो दौर था जबकि वो उनका काफी वक्त इलाहाबाद में गुजरता था, इलाहाबाद से निखत पब्लिकेशंस निकाला करते थे, एक रूमानी दुनिया मंथली, एक जासूसी दुनिया, ये दो। जासूसी दुनिया इब्ने सफी लिखा करते थे जो बहुत पॉपुलर था, तो वो शाहिद अख्तर के नाम से उसमें बहुत सी नॉवेल्स लिखी उन्होंने, हर महीने एक नॉवेल, और बहुत सी नॉवेल उन्होंने आफाक हैदर के नाम से भी लिखी। उसके बाद जब इब्ने सफी जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, जब वो कुछ जहनी तौर से कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ, कुछ साइकेट्रिक पेशेंट हुए वो, तो ये हुआ कि अब कौन नॉवेल लिखे, तो राही साहब से पूछा गया कि क्या आप जासूसी नॉवेल भी लिख सकते हैं, इसलिए कि कोई महीना नागा नहीं होना चाहिए था, हर महीने एक नॉवेल आती थी। तो उन्होंने फिर आफताब नासरी के नाम से भी नॉवेल लिखी जासूसी। तो ये जो मल्टी टास्किंग थी वो मेरे लिए कम से कम बड़ी हैरत अंगेज बात।
राही ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वहीं से अपनी पीएचडी की थीसिस भी लिखी।
लोगों का ये ऐसा मानना है कि मजाज के बाद वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर शख्सियत थे, खास तौर खवातीन में जो उनकी पॉपुलरिटी थी वो फिनोमिनल थी। उनकी जो ये हल्का सा जो लंगाहट थी उसमें भी एक तरह का वो हुस्न तलाश कर लिया करती थी बहुत सी लड़कियां उसके अंदर भी। तो इस तरह से वो राही साहब अलीगढ़ में, और वहीं पर उनकी मुलाकात उनसे हुई जो अब उनकी मौजूदा वाइफ हैं। लेकिन राही साहब कुछ चीजों में बहुत ही नॉन कम्प्रोमाइजिंग थे, और उनको उर्दू डिपार्टमेंट में भी उनके बड़े इख्तलाफात थे कुछ लोगों के साथ, इसलिए भी उनको बड़ा अनफॉर्चुनेट हालात में छोड़ना पड़ा।
राही का रुझान शुरू में शायरी की तरफ अधिक था, उपन्यास लेखन की तरफ उनका ध्यान बाद में गया। एक बार अली सरदार जाफरी ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में राही मासूम रजा को कुछ इस तरह याद किया था।
जब 1953 ईस्वी में पहली बार मैंने राही को कश्मीर की हसीनो जमील वादी में देखा था, तो वो फूल की तरह खूबसूरत था और शायर की शायरी की तरफ रागिब था। आजादी के आते आते उसने शेरो सुखन की दुनिया में अपना एक मकाम बना लिया। उसकी शायरी में उसके अपने लहजे की खनक थी, लेकिन कामयाबी के बावजूद राही ने यकायक शायरी तर्क कर दी। इसके बाद उसकी तख्लीक ने नॉवल का पैकर अख्तियार किया। उसने हिंदी में कई नॉवल लिखे, उनमें सबसे ज्यादा मशहूर नॉवल आधा गांव है।
आधा गांव के माध्यम से राही ने उस मुस्लिम दृष्टिकोण और मुस्लिम राष्ट्रीयता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जो न सिर्फ भारतीय होने की अधिकारी है बल्कि उसके साथ किसी धर्म को जोड़ना शायद उचित नहीं है। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक बार बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
आधा गांव हिंदी में इस मामले में अनूठा उपन्यास है कि आंचलिक उपन्यासों के बीच भी उन्होंने गांव की जिंदगी में बंटवारे के समय रहने वाले शिया मुसलमानों के माध्यम से एक ऐसे समय की और गांव की कहानी ऐसी जबान में कही है जो और किसी ने नहीं कही है। उसमें उर्दू खड़ी बोली हिंदी के साथ भोजपुरी इस तरह मिली हुई है जैसे गंगा जमुना और सरस्वती का संगम हो।
राही 1967 के आरंभ में मुंबई चले आए, जहां शुरू में उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केवल हिंदी के दो साहित्यकारों ने राही की बहुत मदद की।
वो बहुत फैसिनेटेड थे वो फिल्मों से, इसलिए कि जब वो अलीगढ़ में अभी उनकी जॉब थी वो पढ़ा भी रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने लगातार वो फिल्में देख रहे थे और एक ही फिल्म को लाइन से दो तीन चार शो में देखते थे वो, और काफी उनके पास लिखने का भी सामान रहता था वहां, जिस वो बैठ के वो कुछ नोट्स भी लेते थे अपने। तो जाहिर है कि उनके जहन में ये चल जरूर रहा होगा कि मुझे अल्टीमेटली जाना है बॉम्बे में ही। स्ट्रगल तो उनको काफी करना पड़ गया था, इसलिए उनका ये कहना था कि वो दो लोगों के बहुत शुक्रगुजार हमेशा रहेंगे, वो धर्मवीर भारती और कमलेश्वर के। इन लोगों ने उनको बहुत सहारा दिया, और जिस वक्त उनका कोई जरिया आमदनी भी नहीं था वहाँ के ऊपर उस वक्त, तो उस वक्त उनका ये कहना था कि कमलेश्वर जिस मैगजीन को एडिट करते थे उसमें वो एडवांस में उनको पेमेंट कर दिया करते थे, ताकि राही साहब को किसी तरह से वो सर्वाइवल उनका हो सके। और उन्हीं लोगों ने उनको इंट्रोड्यूस भी किया कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से, और बाद में फिर उनके ताल्लुकात फिर बी आर चोपड़ा ग्रुप वालों से हुआ, राज खोसला से हुआ, फिर बाद में वो लोग सब फिल्में लिखवाने लगे उनसे।
अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद।
कुछ ही दिनों में राही की गिनती मुंबई के चोटी के पटकथा लेखकों में होने लगी। उनके मुंबई के दिनों को याद करते हुए ان کے بیٹے ندیم خان جو کہ خود ایک بڑے سینما فوٹوگرافر ہیں بتاتے ہیں.
جہاں رہتے تھے ابھی میرا چھوٹا بھائی رہتا دانشان سے تاج کے پاس میں, چھوٹا سا فلیٹ تھا ڈھائی کمرے کا اور یان میاں اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا ہمیشہ. یہ میں آپ کو فلمی بات میں بتا رہا ہوں, جو آئے دستر خان دوپہر کو بچتا تھا, جو دال روٹی ہوتی تھی 10-15 لوگ جیسے بھی ہوں, برکت اتنی تھی کہ کھانا وہ اور ایسے ہی شام کو ہوتا تھا. میں تو ایف ٹی آئی کا ہوں, میرے کلاس فیلو تھے نصیر الدین شاہ, اوم پوری وغیرہ, ڈیوڈ, تو ان کو جب کہیں ان کو اچھا کھانا کھانا ہوتا تھا تو بہانہ بنا کے ہمارے یہاں آ جاتے تھے. بہت جلدی اٹھنے والوں میں سے تھے اور وہ جو چائے جو پیتے تھے معلوم نہیں اور کوئی پی سکتا نہیں, پی سکتا اتنی پیتی چائے نہ شکر ہو نہ دودھ, لیکن وہ پیتے تھے. تو ان کی چائے ان کو بہت ضروری تھی صبح شروع کر لیں گے. ان کی کمال کی بات یہ ریحان میاں کہ انہوں نے آج تک ہوٹل کا کمرہ نہیں دیکھا. عموماً یہ فیشن بن گیا تھا کہ رائٹر ہو فلانی جگہ ہوٹل بک کرو, وہاں پر پروڈیوسر پیسے دے گا اور تینوں وہاں پہ دارو بھی چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اپنے کمرے میں ان کا ہمارا چھوٹا سا جو گھر تھا اس کے ہال میں گاؤں تکیا بچھا کے زمین پہ لیٹ کے اور ایک ساتھ پانچ پانچ چھ چھ اسکرپٹ لکھتے تھے. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کونے میں ہماری اماں کو قبادیوں کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں, آپ کو یاد ہوگا 70 میں مہندی حسن صاحب بھی فیشن میں تھے تو وہ ان کی غزلیں چل رہی ہیں, میرے دوست آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور اس سب بھیڑ بھاڑ میں اتنے سارے ساؤنڈ ٹریکس کے ساتھ میں وہ لکھا کرتے.
راہی نے ممبئی میں فلم لیکھن کی ساری بلندیوں کو چھوا لیکن وہ بہت ادھک پیسہ نہیں کما پائے.
آج تک انہیں پیسہ مانگنا نہیں ہے. ہماری اماں چلی گئی تو وہ عجیب بےقوف انسان بولے کہ یار ہوں تو ہوں, ایف ٹی آئی کا اگر کوئی بندہ جاتا تھا, یہ سچ بتا رہا ہوں آپ کو, کوئی بھی فلم لکھوانے کے لیے ایک پیسہ نہیں دیتے تھے. کہتے تم ندیم کے یہاں کے کوئی آیا, مٹھائی کا بہت شوق تھا, ایک کلو کلاکند بھی آیا پوری پوری فلم لکھی, کوئی آیا پان کا پیزا دے گیا فلم لکھی. یہ مہابھارت کی بات کی بات ہے اور میں ان کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ صاحب آپ نے زندگی بھر آپ کو پیسہ مانگنا تو آیا نہیں. تو اپنے انہوں نے رات کو ایک نیپولین برانڈی پیتے تھے اور جب کبھی خوش زیادہ ہوتے تھے تو مجھے بلیک لیبل اسکاچ پلا دیتے تھے. وہ دن تھا میں میرے ہاتھ میں بھی ایک بلیک لیبل تھی ان کے ہاتھ میں نیپولین اور میرے سوال کا انہوں نے صرف لیا اور بولے ندیم صاحب کہ گھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں صاحب یہ گھر دیکھ رہا ہوں. میں ڈھائی کمرے کا گھر تو بولے ڈھائی کمرے کا گھر میں نے کہا ہاں. بولے یار سامنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. میں نے کہا ہاں. بولے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں تو ہر سوال میں جو جواب وہ کہتے گئے میں اس کو ہاں ہاں کرتا گیا. بولے یار صبح آتے ہیں لوگ 10-15 لوگ دستر خان کے دالوں کی کشتی جو بنتی ہے وہ کھا لیتے, شام کو بھی ہوتی ہے اور مجھے کیا چاہیے, اتنی برکت دی ہے اور مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے گھوڑ کے تھپڑ مارا کہ اتنی بڑی بات ہی کہہ گئی.
راہی معصوم رضا کے جیون کو رنگ منچ پر چریتارتھ کیا ہے مشہور رنگ کرمی ونے ورما نے اپنے ناٹک میں راہی معصوم کے ذریعے. کافی شوت کے بعد انہوں نے راہی کے چرتر کو منچ پر اکیرنے کی کوشش کی ہے.
وہ لگاتار کشمیری خمام پان کھاتے تھے اینڈ ہی واز اے چین سموکر, ریڈ مالبرو سگریٹ پیتے تھے اور ان کے سامنے ہمیشہ چاندی کا پان کا ڈبا ہوا کرتا تھا. گو تکیا بچھی ہوئی اپنے ڈرائنگ روم میں, قوالیاں چلتی رہتی تھی, دوست احباب آتے تھے, لوگ مہمان آتے تھے اور وہ لگاتار بات کرتے کرتے لکھتے تھے اور کبھی ان کا کانسنٹریشن تھا وہ بالکل ہلا نہیں جس کام پہ وہ لگے ہوا کرتے تھے.
راہی دھرم کو سنکیرن ارتھ میں دیکھنے والے کٹر پنتھیوں کے ہمیشہ ویرودھی رہے. راہی نے ایک بار لکھا تھا, میں نے یہ کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ بابری مسجد اور رام جنم بھومی مندر دونوں کو گرا دینا چاہیے اور وہاں ایک رام بابری پارک بنا دینا چاہیے. ان کی ایک مشہور نظم ہے, میرا نام مسلمانوں جیسا ہے.
میرا نام مسلمانوں جیسا ہے, مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو, لیکن میری نس نس میں گنگا کا پانی دوڑ رہا ہے, میرے لہو سے چلو بھر کر مہادیو کے منہ پر پھینکو اور اس جوگی سے یہ کہہ دو, مہادیو اب اس گنگا کو واپس لے لو, یہ ذلیل ترکوں کے بدن میں گاڑھا گرم لہو بن بن کر دوڑ رہی ہے.
راہی کے لیے دھرم نرپیکشتا کا بہت ویاپک ارتھ ہے. ان کے لیے گنگا سب کی ہے, کسی ایک دھرم کی قید میں نہیں. انہوں نے ایک نظم لکھی تھی وصیت.
میں تین ماؤں کا بیٹا ہوں, نفیسہ بیگم, علی گڑھ یونیورسٹی اور گنگا. نفیسہ بیگم مر چکی ہیں اور اب صاف یاد نہیں آتی, باقی دونوں مائیں زندہ ہیں اور یاد بھی ہیں. میرا فن تو مر گیا یاروں, میں نیلا پڑ گیا یاروں. مجھے لے جا کے غازی پور کی گنگا کی گودی میں سلا دینا, مگر شاید وطن سے دور موت آئے تو میری یہ وصیت ہے, اگر اس شہر میں چھوٹی سی ایک ندی بھی بہتی ہو تو مجھ کو اس کی گود میں سلا کر اس سے کہہ دینا کہ گنگا کا بیٹا آج سے تیرے حوالے ہے.
راہی ویوستھا کے خلاف بلند آواز میں بولنے والے شخص تھے. سامپردائکتا भ्रष्ट राजनीति और धर्म के व्यापार के खिलाफ उन्होंने हमेशा बेबाक टिप्पणियां की हैं। राही को समझने के लिए 1976 के एक महत्वपूर्ण प्रसंग का जिक्र जरूर होना चाहिए।
वो लखनऊ आए हुए थे, हम लोग के साथ रुके भी हुए थे लखनऊ में। वो उस साल उनको मिली के लिए बेस्ट डायलॉग राइटर का अवार्ड दिया गया था। किस्सा ये था कि इमरजेंसी के दौर में तो कुछ आपने देखा ही कि कुछ जर्नलिस्ट को छोड़ के और कुछ राइटर्स को छोड़ के बाकी सारे लोग जो हैं वो इमरजेंसी की साइको फैंसी कर रहे थे उस वक्त। तो फिल्म राइटर एसोसिएशन ने भी एक रेजोल्यूशन ये पास करना चाहा जिसमें वो इमरजेंसी को मिसेस गांधी को सपोर्ट करते हुए, तो उसमें कई लोग जो नहीं भी उससे इत्तेफाक करते थे वो ये तो खामोश रहे या वो एब्सेंट हो गए। बट लेकिन राही साहब तो इस मामले में बहुत ही रिजिड और बड़े स्टबॉर्न थे इस मामले में, तो वो गए भी उसके अंदर। रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जा रहा था और ये हुआ कि यूनानिमस रहेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा वोट ऑफ डिसेंट जो है वो है और मेरा डिसेंट नोट किया जाए। तो उस पर उनके कई दोस्तों ने समझाया भी उनको कि आप इस तरह से डिसेंट मत अपना रिकॉर्ड करवाइए, ठीक है आप वॉकआउट कर जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा डिसेंट रिकॉर्ड भी किया जाए साथ में। तो वो रिकॉर्ड किया गया, जाहिर है करना ही पड़ा उसको। और लेकिन बाद दोनों उन्होंने कहा कि जब मैं घर लौट के आया तो पूरी रात मेरा इस अंदेशे में गुजरी कि कब पुलिस मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इस तरह का, तो गिरफ्तारी तो नहीं उनकी हुई।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।